ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणार्थाय नाथाय सीतायाः पतये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। साढ़े चार बजे जेठ बदी 14 संवत 1995 28/5/38 सेठ जी, हम लोगों का बड़ा अहोभाग्य है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला और यह शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। ऐ तन कर फल विषयन भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। मृत्युलोक तो बहुत बड़ा है परंतु इन सब में हमारा भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। मानव शरीर मिले और भारतवर्ष में मिले और फिर हमें वैदिक सनातन धर्म में जन्म मिले, ये सोने में सुहागा है। वास्तव में असली धर्म ही ये सनातन धर्म है और तो सब मत है। मत होता है वो धर्म के एक अंश में होता है, धर्म व्यापक होता है। सनातन धर्म है, बाकी सब मत है। सबकी जड़ सनातन धर्म ही है। इसी सनातन धर्म से मत मतांतर निकलते हैं। ये जो ईसा का कहना है कि जो प्राणी संसार में है वे हमारे भाई हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है ये सब हमारी आत्मा है। भगवान ने भी गीता में कहा सर्वभूतस्थमात्मानं। भाई कहने में और आत्मा कहने में रात दिन का अंतर है। भाई भाई मानने से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो सकती है और लड़ाई खूब हो रही है। कचहरी में जाओ ज्यादा भाइयों की लड़ाई मिलेगी, वो कहेगा हमारे हमारा हिस्सा है, वो कहेगा हमारा हिस्सा है। दुर्योधन को कहते थे अर्जुन कौन है, मेरा भाई है। युधिष्ठिर कौन है, मेरा भाई है। भीम कौन है कि मेरा भाई है। युधिष्ठिर से पूछो कि दुर्योधन कौन है कि भाई है। ये सब भाई तो थे, लड़ाई हुई, भाई भाई में लड़ाई हो सकती है किंतु आत्मा मानने से लड़ाई नहीं होती। तुलसीदास जी बोलते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा संसार सीताराम मय है, ऐसी भावना होते ही मन झुक जाता है, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको अपनी आत्मा के तुल्य समझता है। कोई आदमी कोई अपने साथ द्वेष थोड़ा ही करता है, कोई आदमी अपने आप से लड़ाई थोड़ा ही करता है। आत्मा के समान समझो, ये बात किसी धर्म में नहीं मिलती है। दूसरे देश वाले कहते हैं अपने देश की उन्नति करो, बात ठीक है, देश की उन्नति करो, परंतु हमारा शास्त्र और भी बड़ी बात बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन है, बांधवा विष्णु भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्। हमारी माँ कौन है, लक्ष्मी देवी। पिता कौन है, जनार्दन भगवान। भाई कौन है, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं। आप रहने वाले कहाँ हो, स्वदेशो भुवनत्रयम्, त्रिभुवन हमारा है। कितना विशाल हमारा घर, हमारी माँ सबकी माँ लक्ष्मी देवी, हमारे पिता सारे संसार के पिता, सबको लेकर चलने वाला एकमात्र ये सनातन धर्म है। हमारे शास्त्रों में पंच यज्ञ बताए हैं, जिसमें दूसरों को भोजन मिले वो यज्ञ है, और जिसे सारे संसार को भोजन मिले वो महायज्ञ है। भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। घर का काम धंधा है इसको यज्ञ बना के करोगे तो सब पापों से मुक्त हो जाओगे। उसका परिणाम भी बताते हैं, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। यज्ञ शेष माने सबको देने के बाद जो बचे उसको जो पावे वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, क्योंकि वो अमृत होता है। ऐसा है कहीं धर्म में, और धर्म में? हमारा धर्म बड़ा अच्छा है, उदार है। भगवान कहते हैं सारे प्राणियों से निर्भर हो जाओ। कितनी ऊंची बात है, निर्वैर सर्वभूतेषु। भगवान ने कह दिया, भगवान से बढ़कर क्या होगा। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त है संग वर्जित है निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति, वो मुझे ही प्राप्त होता है। किसी में भी बैर नहीं है, वो भगवान का प्यारा है। एक के साथ में यदि बैर है तो आपका कल्याण तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान को सब में परमेश्वर के रूप में मानते हैं और सब में विद्यमान परमात्मा की उपासना करते हैं। अब बताओ, यदि किसी के साथ भी बैर है तो वो परमात्मा के साथ ही तो बैर हुआ, क्योंकि वह परमात्मा से अलग नहीं और परमात्मा उससे अलग नहीं। किसी से भी बैर रखना वैसे ही है जैसे कोई किसी को खूब अच्छी तरह से पूजता है, माला पहनाता है, टीका लगाता है, सब तरह से पूजता है, परंतु एक अंगुली के अग्रभाग को काटता है कि हम आपके सारे शरीर की तो पूजा करते हैं, इस एक अंगुली को काटते हैं या केवल एक अंगुली को आग में रखते हैं और हम आपके शरीर को पूजेंगे, तो क्या वो आदमी खुश हो जाएगा? वो कहता है छोड़ तेरी पूजा को, नहीं चाहिए तेरी पूजा, जब तू अंगुली में आग लगाता है तो मेरे को ही तो पीड़ा होगी, हम ऐसी पूजा नहीं चाहते। यही बात भगवान को हम पूजते हैं और उनकी अंगुली के हम आग लगाते हैं कि अंगुली क्या है? अंगुली है जीव, इतने विशाल परमात्मा के यहां एक जीव है, अंगुली है। क्योंकि भगवान ने कहा है मम एव अंश है, ये सब जीवात्मा मेरे ही अंश हैं। हमारे धर्म में कितनी उदारता है कि तर्पण में अपने बैरी को भी तर्पण देते हैं। ऋषि लोग भी यज्ञ में ये प्रार्थना करते हैं, या ऋषि यज्ञ में भी हम प्रार्थना करते हैं पश्चिम सर्ग सतम इत्यादि। या एक वचन नहीं किंतु बहुत वचन है पश्चिम। जितने मत मतांतर हैं उनमें सभी सबके हित के लिए प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र हो तो वो भी यही बात, धियो यो न प्रचोदयात, हम सब की बुद्धि को आप प्रेरणा देवें। बलि वैश्वदेव में भी हम सारी दुनिया को भोजन कराते हैं कि सब जीव तृप्त हो जाए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो समुद्रः तृप्यन्ताम्, समुद्र को जल देने का पुण्य होता है, सूर्य को जल देने का पुण्य, सब सूर्य संसार को प्रकाश देता है उसको हम जल देते हैं। बलि वैष्णोदेव में कहते हैं ओम धात्रे नमः, इदम धात्रे न मम है, ये विधाता के लिए है, हमारे लिए नहीं है, न मम लिखा है। प्रत्येक आहुति में भी ऐसा ही त्याग है, इदम इंद्राय न मम, इदम वरुणाय न मम। कितनी उदारता है, कितना ऊंचा भाव है। निष्काम भाव का फल सनातन ब्रह्म की प्राप्ति है। इसके करने में केवल 3-4 मिनट लगते हैं, भोजन पवित्र हो जाता है बलि वैष्णोदेव करने से। इसी प्रकार अग्निहोत्र में भी त्याग है, सब में त्याग ही त्याग है। अतिथि सेवा त्याग को ही बताती है। मनुष्य परम पद की प्राप्ति कर सकता है अतिथि सेवा से, सूर्य भगवान को जो तीन अंजलि दी जाती है, इदम सूर्याय न मम, इदम सूर्याय न मम, वे ही सूर्य भगवान वर्षा के रूप में सबको तृप्त करते हैं। माता को, पिता को, आचार्य को, अतिथि को हमारे शास्त्र में देवता माना गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जो व्यक्ति बहुत ध्यान से अतिथि सेवा करता है, उसके घर भगवान कभी न कभी गुप्त रूप से बिना कहे अतिथि के रूप में आते ही हैं। कितनी ऊंची बात! कोई भी आए घर पर, साहब भोजन करो, तो वो अतिथि का आदर करता है, तो उसके आतिथ्य को भगवान स्वीकार, हमको पता ही नहीं, हमने मामूली कोई आदमी आए भाई, और भगवान भोजन करके जाता है, और कोई अतिथि को भगवान ही समझ ले तो, कि भगवान आए हैं। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, भगवान समझ करके उस अतिथि की सेवा करो, भगवान और भी खुश होते हैं। यदि भगवान आते हैं तो एक भगवान को भोजन कराया, और भगवान की भावना से आप अतिथि को भोजन कराओगे तो सारे ही भगवान के रूप में भगवान को आपने पूज दिया, भगवान की सेवा कर दी, कितना ऊंचा लाभ है। अतिथि सत्कार का बड़ा महात्म्य है। भगवान कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये साक्षात ब्रह्म है, इसका जो जप करता है वो परम पद को प्राप्त होता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म यान्ति ब्रह्म सनातनम्। ब्रह्म लोक तक के जीव वापिस आ सकते हैं, परंतु उस परम पद को गया हुआ फिर इस संसार में नहीं आता। जो नित प्रति सूर्य की उपासना करता है उसको सूर्य देव परम धाम में पहुंचा देते हैं। जो अग्निदेव की उपासना करते हैं उनको अग्निदेव परम धाम में पहुंचा देते हैं। हमारी माताएं घर में रसोई बनाती थी तो पहले छोटा सा एक आटे का टुकड़े से बाटा सा बनाती थी, उसमें घी डालती थी और चूल्हे में डालती थी, अग्नि की भोग लगाती थी। अनपढ़ माता जानती नहीं, परंपरा है, माता पिता के यहां थी तो मां के आसिक डालते हुए देखा, फिर विवाह हो गया तो सासू जी के द्वारा डालते हुए देखा, फिर खुद सासू बन गई तो अपने बहुओं को बताया। कितनी सनातन परंपरा चलती है, कितना ऊंचा काम, अग्नि की आराधना होती है। ये जितने यज्ञ हैं यदि कामना का भाव न रखा जाए तो ये सब परम धाम पहुंचाने वाले हैं, और यदि कामना भी रखी जाएगी तो जो आपको चाहिए वो आपको प्राप्त करा देते हैं। साधक लोग कामना को सामने नहीं रखा करते, अपना धर्म तो गुण रहित कल्याणकारक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण है पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म का पालन करता हुआ मनुष्य यदि मर जाए बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमको निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म के पालन में कटिबद्ध होकर रहें, भगवान का भजन करें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युद्ध चय। कि यदि कोई सन्यासी भी इस दृष्टि से मेरे पास भिक्षा मांगे कि जयदयाल एक अच्छा आदमी है, साधु पुरुष है और इसका दिया हुआ अन्न है वो प्रसाद है, और मुझे यदि मालूम चल जाए कि ये महात्मा सन्यासी महात्मा मेरी दी हुई भिक्षा को प्रसाद मानेंगे तो मैं उस सन्यासी को भिक्षा नहीं दूंगा, रोटी नहीं दूंगा उसको। क्यों? इसकी बात सुनो, रहस्य की बात। ये बात क्यों कह रहे हैं? आजकल हम लोगों में पाखंड बहुत हो गया, हमसे प्रसाद ले हो आपका कल्याण हो जाएगा, आप देखेंगे वो साहब इनके हाथ से ले हो कल्याण हो जाएंगे। हमको देना इसलिए चाहिए, हमारा कर्तव्य आप आए हैं तो हम आपको प्रसन्न करें। प्रसन्नता का द्योतक है प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान के अर्पित किया हुआ है आप ले जाओ, आपका भी अंतःकरण पवित्र हो और हमारा भी हो, इसलिए प्रसाद का कार्यक्रम उसमें अब धीरे धीरे बढ़ेगा। साहब हमारा प्रसाद ले लो। कहीं कहीं तो बड़ा विचित्र नियम है, खूब सारा थाल में रख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा खाएंगे ऊंठा कर देंगे, अब प्रसाद देव साहब वो ऊंठा प्रसाद देते हैं, और श्रद्धा वाले लाओ ऊंठा प्रसाद देव शीत प्रसाद, वह पाखंड है। कोई जमाने में कोई महात्मा ऐसे हो गए, शताब्दियां बीत गई, सैकड़ों वर्ष बीत गए, अब उन्होंने जो भजन किया, उन्होंने जो कल्याण की भावना से उपदेश दिया उसका आचरण तो हम लोग करते नहीं, और उनकी बाहरी क्रिया को साहब हम उनकी जगह पर बैठे हैं, हमारा ऊंटा खाओ, पाखंड है। हम तो ऊंटे की क्या, हम तो कह रहे कोई प्रसाद बुद्धि से आए हम तो नहीं देंगे, भिक्षा नहीं दूंगा। क्यों? यदि उसके अंदर ये श्रद्धा है कि जयदयाल का अन्न खाने से, उस अन्न को प्रसाद समझने से मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि उसका कल्याण नहीं हुआ तो उसका कलंक मेरे पर आएगा, अथवा यदि उसकी श्रद्धा न हो तो भी ठीक नहीं है। महापुरुषों की दया अपार होती है, महापुरुष की हर क्रिया सोच समझ से की जाती है। एक तो ऐसा होता है कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए और वह दूसरा वह है जो दूसरों को भी दर्शन कराने की शक्ति रखता है, तो उसकी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती, वह तो जो कहता है वो सच बात ही होती है। महात्मा पुरुष जिस क्षण शक्ति का प्रयोग करता है उसी क्षण अपना कार्य दिखला देती है। इसलिए पुराने जमाने में ये शक्तिपात की बातें सुनने को मिलती हैं, ये बड़ी विलक्षण होती है। परंतु शक्तिपात जिस पर होता है और शक्तिपात जो करते हैं वो मामूली पुरुष नहीं होते। जैसे अगस्त ऋषि को जब इंद्र ने कहा सर्पगच्छ, ए अगस्त जल्दी चलो, और अगस्त ऋषि पालकी ढो रहे थे और सर्प गच्छ माने तू जल्दी जल्दी, सर्प माने जल्दी चलना, सर्प गच्छ जल्दी चल। तो अगस्त ऋषि ने पालकी पटक दी। वो इंद्र कौन था? नहुष था। नहुष इंद्र के आसन पर बैठा। देखो आसन पर बैठते हैं तो वो उसी पद से कहलाते हैं। जो पुराने आसन पर बैठता है उसको उसी आसन से कहा जाता है। तो वो इंद्र के आसन पर बैठा नहुष राजा, तो उसको इंद्र ही कहा। तो कहा सर्पगच्छ, ऐसे ही नहीं कहा। वो बैठा था पालकी पर नहुष, इंद्रियों धीरे धीरे चल, वो अगस्त ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे। सेठ जी ने तो बचा के लिखा है, महाभारत में आता है कि धक्का दिया एक पैर से, धीरे धीरे चलता है, जल्दी चल सर्पगच्छ। अगस्त ऋषि ने कहा अरे तू लात मारता है ऋषि के, और उन्हें पालकी को पटक के कहा सर्प हो जा तू यहां। कहा कि सर्प हो जा, तो उसी समय सर्प हो गया। महाराज मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरे से गलती हो गई। तो कहा मेरा वचन तो व्यर्थ नहीं जाएगा, अभी सर्प तो रहेगा, लेकिन तूने पश्चाताप कर लिया तो जो अपराध को स्वीकार कर लेता है ये बहुत ऊंची आदत है, बहुत अच्छी बात है। अपने साथ मेरे से गलती हो गई, बहुत ऊंची बात है, तुमने ये अच्छा किया, अपनी गलती मानी, पश्चाताप किया, तो भाई सर्प तो तुमको होना है तो होना ही पड़ेगा। द्वापर युग में जब महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठेंगे, राजा होकर यज्ञ करेंगे और तुम्हारी उनसे कभी भी बातचीत हो जाएगी, युधिष्ठिर से बातचीत करने के बाद तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये अद्भुत शक्ति महापुरुषों में होती है, ये याद रखना चाहिए। जो असली महात्मा होते हैं वो अपने को कभी महात्मा नहीं कहते, न वो अपनों को भीतर से महात्मा मानते हैं। उनका गुण प्रभाव बड़ा विचित्र है, गुण और प्रभाव भीतर की चीज है। महात्मा के गुणों की अद्भुत लीला है, जिसका किसी के साथ भी द्वेष नहीं है, जो सब में सम और दयालु है, जिसमें न हर्ष है न द्वेष है न उद्वेग है न भय है, वो परमात्मा का प्रिय है। अद्वेष्टा स्व सर्वभूतानां अनपेक्ष सुचिर दक्ष है। इस प्रकार से जो शुद्ध आचरण वाले होते हैं, जिनके आचरणों की शिक्षा दूसरों को मिलती है, जिनके हृदय में दूसरों से कभी व्यथा नहीं होती, जो संसार के सुख दुख से उदासीन रहते हैं, जो संसार में किसी क्रिया के कलाप से अपना कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होते, अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होते, जो शत्रु में और मित्र में समान परमात्मा का स्वरूप समझते हैं, जो शीत और उष्ण में सम है, जो आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति में समान है, जो स्वयं किसी की निंदा स्तुति नहीं करते, मौनी हैं, जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उसको प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं अथवा उसमें प्रसन्न ही रहते हैं, ये सब भगवान के भक्त के लक्षण हैं। इन लक्षणों के साथ अपने को चलना चाहिए।